स्वागत है श्री श्री गौर निकाय केंद्र पंचशील में रविवार के सत्संग में। रविवार को हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, और कृष्ण भावना भावित होना इस भौतिक जगत में इतना आसान नहीं है। ये जगत माया के तीन गुणों के अंतर्गत कभी ऊपर कभी नीचे सबको घुमाता रहता है। इसमें स्थिरता के साथ स्टेडी कृष्ण भावना में भावित रहना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है, क्योंकि तीन माया के गुण उनकी जो ऊपर नीचे हलचल होती है वो आदमी को हमेशा डगमगाती रहती है। आदमी की बुद्धि स्तर सदा के लिए रह पाए ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए निरंतर जिसका दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प का मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, जिसने जीवन में एक नेम बना रखा है कि कुछ भी हो मैं ये मौका अब हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये मानव जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये मानव जन्म। इस हरे कृष्णा मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष जिस महापुरुष के नाम से हुआ, भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत, तो उस महाराज भरत को शिक्षा देते हुए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, भारत महाराज को लक्षित करके इसलिए बोला कि भारतवासियों के लिए संदेश है, हे भारतवासियों दिव्य तपस्या करो, दिव्य तपस्या। तपस्या का मतलब है अपनी इच्छा से कुछ कष्ट सहने के लिए आदमी तैयार हो, सो इच्छा से कष्ट को सहना। और दिव्य तपस्या का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति और प्रेम हो, इसलिए थोड़ा कष्ट सहने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करना। तो दिव्य तपस्या क्यों कह दिया, तपस्या ही कह देते। तपस्या इसलिए नहीं कहा कि तपस्या तो सभी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तपस्या तो सब सुबह से शाम तक कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं 8 घंटे, घर से बाहर जाते हैं, बसों में चढ़ते हैं, वो काम करने वाले रोज बसों के अंदर लटके हुए जाते हैं, दोनों हाथों से ऐसे टांगे हुए जाते हैं, 3-3 घंटे रास्ते में जाते हैं, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को खाते हैं, ये तपस्या नहीं है। भूख भी लग रही है, गर्म रोटी खाने की इच्छा भी कर रही है, लेकिन सुबह घर से मिली है वही दोपहर को खानी है, ये तपस्या है कि नहीं, ये साधारण काम थोड़ी है। तपस्या तो सभी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोटी पकाने के लिए, गर्मी की मौसम में जाके चूल्हे के ऊपर काम करना, तो तपस्या तो सब कर रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या कोई नहीं कर रहा है। वो तपस्या जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण भावना भावित हो आदमी, वो तपस्या करने वाले बहुत कम है। तपस्या तो सारे ही कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी है, रात रात लोग जागते हैं, लोग बैठ के कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, आसान काम थोड़ी है। गर्दन एक जगह ऐसे पड़ी होती है, तपस्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या कोई नहीं कर रहा है। ये तपस्या क्यों कर रहे हैं लोग? संसार के अंदर थोड़ा सा सुख भोगने के लिए। ये सारी जो भी तपस्या हम कर रहे हैं, इस तपस्या के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम इस संसार के अंदर थोड़ा सा सुखी हो जाएं। और कोई उद्देश्य है क्या इसका? इस सारी तपस्या का कोई और उद्देश्य है क्या इसके अलावा कि इस दुनिया के अंदर अच्छे मकान में रहें, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा खाना खाएं, अथवा इसके अलावा वह अच्छा भोग करेंगे, इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य है क्या इस सारी तपस्या का? नहीं है। तो इसलिए ये तपस्या तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? सुख भोग के लिए। सुख किससे आदमी भोगता है? इंद्रियों से। इंद्रियों से सुख भोगता है, सुख किससे भोगेंगे? भाई कुछ खाना है तो खाई मुख से खाएंगे तब वो सुख मिलेगा ना, तो इंद्रियों से सुख भोगते हैं ना। भाई कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद से सुनना चाहेंगे तो कान से सुनेंगे ना, तो सुख तो इंद्रियों से भोगा जाता है। इसलिए ऋषभदेव महाराज ने महाराज भक्त को कहा, ये जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, ये तो हर पशु को हर जूनी में मिलता है। विड़भुजांग कहते हैं सूकर को, पिग को, वो भी बहुत सुखी होता है। मलमूत्र खाने में उसको बहुत आनंद आता है, इतना हमारे को कचौरी और हलवा खाने में नहीं आता, उससे ज्यादा उसको मलमूत्र खाने में आनंद आता है। कटर के अंदर पड़ा होता है, बड़ा खुश होता है। तो ये सुख तो सब जोड़ियों में सबको मिल रहा है। इंद्रिय तृप्ति के सुख के लिए हमें इतने बड़े मकान बना के इतना बड़ा झंझट पालने की क्या जरूरत है? पशु तो गली के अंदर जैसे चाहे वैसे भोग करके आनंद ले रहे हैं। तो ये इसी सुख के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं क्या? दुनिया का जो तुच्छ सुख है, जो सुख ही नहीं है, इस सुख को कहते हैं दुख को कम करना। ये सुख क्या है? ये सुख दुख को कम करने का नाम है। तो असली सुख कहां है, किससे प्राप्त होता है, कैसे? इंद्रियों से सुख वो नहीं होता है। तपो दिव्यम, वो सुख कहां से मिलता है? ब्रह्म सुखम अनंतम, वो सुख आत्मा का है और वो अनंत है, वो कभी कम नहीं होता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो सुख एक एक कदम कदम के ऊपर बढ़ता है, उसमें आनंद के समुद्र में आदमी सदा के लिए मगन रहता है। वो सुख आत्मा से ब्रह्म आनंद, उसको ब्रह्म आनंद बोलते हैं। तो हम सुख शरीर और शरीर की इंद्रियों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि महाराज भरत को शिक्षा दी जा रही है कि भारतवासियों को आत्मा के आनंद का अनुभव करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बाकी सारी शिक्षा सब जोड़ियों में सबको मिलती है, सब सुख बाकी सब जगह मिलते हैं, वही काम हम करते जा रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या हो गया? इस दुनिया का जो सुख है वो सदा रहने वाला नहीं है। जो सुख आप आज को आज आपको अच्छा लग रहा है, कल वही खराब लगने लगेगा। आज जो आपका दोस्त आपको अच्छा लग रहा है, कल उस दोस्त से दुश्मनी हो जाती है। इस दुनिया का सुख तो भाई भाई प्रेम से बहुत अच्छे रहते हैं और शादी के बाद तो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। तो ये संसार के सुख तो सारे ऐसे हैं जो क्षणिक है, कभी बदलते हैं इधर कभी उधर बदलते हैं। तो अनंत सुख कहां से मिलेगा? वो आत्मा का सुख कहां से आता है? भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, भगवान आनंदमय है, भगवान आनंदमय है। सत्य के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, चित्त के द्वारा भगवान भगवत गीता आदि की शिक्षा देते हैं, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, और आनंद के द्वारा भगवान रस आस्वादन कराते हैं, रास लीला करते हैं। ये भगवान की आनंद की अभिव्यक्ति है। आनंद भगवान का क्या है? जिसमें रस ही रस हो और जो कभी खत्म न हो। तो वो आनंद कैसे प्राप्त किया जाए? वो आनंद संसार में बिखरा हुआ है चारों ओर, हर समय के लिए सबको मिल सकता है, लेकिन हम उस आनंद का क्यों नहीं सुख ले सकते हैं? इसलिए हम किसी को कहा कि भगवान के चरण कमल जो है उसको कहते हैं अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद, जो भगवान के चरण हैं, चरण चरण अरविंद, जो भगवान के चरण कमल हैं, उसको अगर कोई पकड़ लेगा तो भय से मुक्त हो जाएगा, उसका सारा खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम भगवान के चरण पकड़ते क्यों नहीं है? भगवान के चरणों में कौन बैठा होता है सदा? हाँ, बस उसको देखते हैं चरण भूल जाते हैं, बस ये हमारी सबसे बड़ी। ऐसा भगवान ने ऐसा बहुत सुंदर सा एक व्यवस्था करके रखी है, चरणों में लक्ष्मी है और नजर उधर पड़ती है तो चरण भूल जाते। क्यों हम चरण भूलते हैं? हम इसका अनुभव करके देखा, बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी वो चरण किसी को देती भी नहीं है, बोला इसको हाथ लगाने से पहले मैं आपके साथ जाते हैं, अपने भगवान जान जल रहने दीजिए, आप ही माँ ठीक है हमारे लिए। ये असल में संसार में बहुत बड़ा वो कौन सी लक्ष्मी पता है? दो लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी कमल के ऊपर रहती है और दूसरी उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है। जो भगवान नारायण के बगैर लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करती है वो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है। लक्ष्मी आदमी को दिन को रात बताता है, रात को दिन बताती है। उल्लू का मतलब क्या है? सूरज निकलेगा आंखें बंद कर देगी उसको, इसको बोलते हैं धन मद अंध। धन के मद में आदमी अंधा हो जाता है। तो उल्लू के ऊपर जो लक्ष्मी आती है वो आदमी को धन के मद में अंधा कर देती है। और जो लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर भगवान नारायण के साथ आती है, जो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी किसके ऊपर आएगी? गरुड़ के ऊपर आएगी। और गरुड़ की ध्वनि से वेद निकलते हैं, गरुड़ वेद की ध्वनि का प्रतीक है। इसका मतलब साधु संतों के सत्संग में हरि कथा से जो गरुड़ के ऊपर चढ़ी हुई नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी वो असल में हमको भगवान के चरणों का आनंद लाएगी। तो उस लक्ष्मी का अभिलाषी अभिलाषा करना जो गरुड़ के ऊपर आती है ये तो सबको करनी चाहिए, लेकिन उल्लू के ऊपर लक्ष्मी जो आती है उसका जो इच्छा करता है वो संसार में अंधा हो जाता है। और दुनिया में जितने भी आदमी को अंधे करने के साधन हैं, उसमें सबसे बड़ा खतरनाक है धन का मद का अंध, धन का नशा, दौलत का नशा, ऐसा और कोई नशा नहीं। इसलिए बहुत मुश्किल है कृष्ण भावना भावित होना, ये रोग है। धन मद अंध एक रोग है। क्या है? बहुत बड़ा रोग है। ये ऐसा रोग है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो रोग की चिकित्सा किसी डॉक्टर को ही रोग की चिकित्सा के लिए कहे कि इसकी दवाई करनी चाहिए, दो चीज डॉक्टर बताता है, दवाई लो और थोड़ा सा परहेज करो, खाना पीना टाइम से नियम से खाओ तो आपका रोग समय के साथ निवृत्त हो जाएगा, आप रोग से मुक्त हो जाओगे। तो क्या दवाई है इस रोग की? भौतिक जगत के माया के अंध का रोग जो संसार सारे को अंधा करके रखा है, उसका इलाज क्या है? दवाई क्या है? औषधि क्या है? भगवान के नाम, भगवान का पवित्र नाम, नाम औषधि है, दवाई है। लेकिन ये दवाई इंसान को पिलाना, प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में ऐसे है जैसे घोड़े को दवाई पिलाना। छह आदमी चाहिए, चार आदमी पांव पकड़ते हैं, पांचवा आदमी मुंह खोलता है और छठा आदमी दवाई डालता है। कलयुग में किसी को ये हरि नाम की दवाई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये दवाई किसी को पिलाना घोड़े को दवाई देने के बराबर है और छह आदमी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन में कहा कि एक नहीं पांच सात आठ साथ में जाया करो प्रचार करने। ये दवाई बहुत कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जब संकीर्तन करने साथ जाते हैं तो पहले तो मृदंग बजाते हैं ताकि उसके कानों में बाहर की आवाज न पड़े और फिर जोर जोर से भगवान का नाम ले लेके कैसे भी उसको ये दवाई पिलानी है। और हमारी अवस्था कैसी है, हम बच्चे जैसे हैं, बच्चा दवाई कभी पीना पसंद नहीं करता। हम आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चे हैं, उम्र चाहे हमारी कितनी बड़ी हो। एक संत के पास हम गए तो हमको कहा सबको प्रसाद दो टॉफी और बिस्कुट, और प्रभुपाद भी प्राय कुकी प्रसाद बिस्कुट दिया करते थे। हमने विचार किया ये सब संत प्रसाद टॉफी बिस्कुट क्यों देते हैं, तो उसका उत्तर ये आया कि सबको आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चे ही समझते हैं, बच्चे ही खुश होते हैं टॉफी और बिस्कुट से, है ना। तो इसका मतलब उम्र चाहे 60 साल हो या 70 साल हो, लेकिन भगवान के नाम जपने में दवाई लेना जितनी बच्चे के लिए कड़वी है इतनी हमारे लिए कड़वी है। तो बच्चा ही हमारा बुद्धि बच्चे जैसी ही है, उम्र भले बढ़ जाए लेकिन हमारी बुद्धि बच्चे जितनी है। आध्यात्मिकता में हमने हमारा पहला कदम भी हमने रखा नहीं है। बच्चा कभी शौक से दवाई लेता है, आपने बच्चे बहुत पाले तो कभी दवाई लेता है कभी नहीं लेता है ना, जबरदस्ती देनी पड़ती है ना। और कौन जबरदस्ती देता है दवा, माँ। डॉक्टर भी कहेगा माँ को तुम दो, या नर्स दूसरी का नाम है नर्स। तो कौन जो बहुत प्रेम करता है वो ही दवाई देता है, हर एक आदमी दवाई नहीं देगा। तो एक तो भगवान प्रेम करता है इसलिए वो भगवान अपने नाम रूपी इस दवाई को इस धरती के ऊपर लाए, और एक भगवान के प्यारे भक्त जो है साधु संत वैष्णव है वो बहुत बड़े दयालु है, वो कैसे भी करके जबरदस्ती दवाई देने का प्रयास करते हैं। हम रोगी हैं, हमको दवाई पसंद नहीं है, और हम बच्चे हैं इसलिए दवाई लेने की हमारी इच्छा भी नहीं है। और परहेज में भोजन में नमक कम खाना, नमक कम डालना है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर है नमक कम डालो नहीं तो मरोगे, फिर भी थोड़ा सा नमक किधर से डालो, थोड़ा सा तो डालो, ऐसे हमारी इच्छा होती। तो परहेज को भी हम स्वेच्छा से नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसको अपने रोग का पता है कि मेरा रोग ये है इसकी दवाई मैं नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो रोज सुई भी लगाते हैं। डायबिटीज के मरीज रोज अपने आप को सुई लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? रोज सुई लगाना आसान तो नहीं है ना। बच्चा दवा नहीं लेता है लेकिन बड़ा समझदार अपने आप को रोज सुई लगाता है। क्यों लगाता है? नहीं लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये तो लगानी ही पड़ेगी, और रोज सुई लगाते हैं। कहीं भी जाता है अपनी सुई साथ ले जाता है, और भोजन खाने से पहले सुई लगाता है, मालूम है। और परहेज का भोजन करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। ऐसे भौतिक रोग ऐसे समझ लीजिए कि उस डायबिटीज की तरह दुनिया में हमारे को लगा है। वो भी कब से आता है? डायबिटीज को पता है डॉक्टर क्या कहते हैं? आपके खानदान में किसी को थी ना, ऐसे बोलते ना, ये मोरूसी इसको कहते हैं, फैमिली में आती है, मालूम है। डायबिटीज पेरेंट्स को होगी, वही शुगर, उसी का नाम डायबिटीज। शुगर खानदान में चलती है, ये खानदान। एक आदमी को, बड़ा आदमी था जमींदार, उसको शुगर की बीमारी हो गई। उस वक्त शुगर कंट्रोल पे मिलती थी सरकार की, तो यार गांव का आदमी था, और लोग कितने दुखी हैं, हमारे साहब को देखो शुगर की अपनी फैक्ट्री लगी है, जब चाहो शुगर, उसके पास शुगर ही शुगर है, अंदर में शुगर ही शुगर बनी हुई है उसकी। तो कभी कभी डायबिटीज वाले हमको मिलते हैं, हम कहते हैं आप अपनी शुगर की फैक्ट्री लगाइए, बड़े सुखी हो। तो कैसी बीमारी है? खानदानी। इसका मतलब ये भौतिक जगत की जो हमारी बीमारी है कई पीढ़ियों से हमको आ रही है, जितनी कई जन्मों से आ रही है, एक जन्म की नहीं है ये, बहुत जन्मों से आ रही है, एक जन्म का नहीं है ये आदत हमारी इस संसार के भोग की। असंख्य जन्मों से है। इसलिए ये दो काम जो है, एक भगवान का नाम जपना, ये तो रोज का समझो कि सुबह दोपहर शाम सुई लगाने के बराबर है, और नेम से केवल शुद्ध भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाना ये हमारी परहेज है। जो नेम से ये दो काम ठीक तरह कर सकता है वो संसार के रोग को जब तक जिएगा तो रोग को कंट्रोल कर सकता है। रोग नाश नहीं होगा जल्दी, और रोग ये नाश होता ही नहीं है, जब तक ये शरीर है तब तक रोग नाश नहीं होता है साधारण व्यक्ति का संसार में। इसलिए कितनी सावधानी चाहिए इस काम करने के लिए, सीरियसनेस चाहिए बहुत, और दृढ़ संकल्प चाहिए। ये दो चीजों में हमने थोड़ी भी कमी की तो बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण कर देगी। बीमार तो है पहले से ही, पहले ये मान लेना कि हम बीमार है ये भी मुश्किल है। हमको रोग है कि नहीं है भौतिक जगत का? बहुत भारी रोग है। कितनी मेहनत रोज करनी पड़ रही है। साधु संतों को भगवान का नाम जपते हैं, कुछ भी नहीं करते, न दुकान चलाने की जरूरत, न मकान चलाने की जरूरत, न फैक्ट्री चलाने की जरूरत, कुछ भी नहीं करते। 50-100 आदमी आते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं, कुछ भी नहीं करते, कोई तकलीफ नहीं करते, केवल दिव्य तपस्या करते हैं। वो सुबह 3 बजे उठ के और भगवान का नाम बैठ के जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक ही काम करते हैं और कुछ भी नहीं दुनिया का करते, और उनकी दुनिया हमसे अच्छी चल रही है। ये मानते हो कि नहीं मानते? समझ में आता है कि नहीं आता है? लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते हैं वैसे? क्योंकि उन्होंने अपने रोग को रोक दिया है, बड़ा दृढ़ संकल्प कर लिया है कि सुबह तो हमको उठना ही है 4 बजे से पहले, और दूसरा सबसे मुश्किल काम है सुबह सवेरे उठना। सतोगुण में रहने के लिए सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए, और बहुत से लोग आजकल नहीं उठ सकते हैं। बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों नहीं उठ सकते हैं? कहते हैं देर तक काम करना पड़ता है। तुम 2-3 जगह पे हमने कहा कि हम रात को 10:30-11 बजे दुकान बंद करते हैं। मैंने किसने आपको जबरदस्ती कहा है? आप 7 बजे बंद करके आओ, कोई आपको रोकेगा क्या? बोले दूसरे का धंधा चलेगा। बोले उसको भी बुद्धि नहीं है क्या? सब आपस में मीटिंग करके जब संडे को सब बंद करते हैं तो क्या दुनिया चलती नहीं है क्या? अगर आदमी सारे जैसे सब कमेटियां बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है हर सिस्टम की, ये मार्केट कमेटी काहे के लिए धंधा कर रहे हो? उनसे पूछो क्यों धंधा कर रहे हो, जवाब क्या देंगे? बच्चे पालने के लिए, यही कहेंगे ना, पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए। तो बच्चे तो पाल नहीं रहे हो, बच्चे तुम्हारे धक्के खा रहे हैं, तो तुम क्या खाए के लिए अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? तुम 11 बजे जाते हो तब तो बच्चा सोया हुआ तुमको मिलेगा, और तुम 11 बजे सुबह उठते हो तब तक बच्चा बेचारा स्कूल चला जाता है, तो तुम किसके लिए कमा रहे हो? तेरे भाग में जो पैसा है, जो धन लिखा हुआ है, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है अधिक प्रयास मत करो। दुख के लिए कोई दुनिया में नहीं प्रयास करता है, कोई दुख के लिए दुनिया में? किसी आदमी को अभी आपने सुना है कभी मंदिर में जाके कहा हो कि मैं बाहर जाते हुए गिर जाऊं, मेरा पांव टूट जाए? कभी की ऐसी किसी ने प्रार्थना कि मेरे 2 फ्रैक्चर हो जाए आज, कम से कम मेरे को 3 महीने छुट्टी लेनी है? ऐसा कोई प्रार्थना करता है? नहीं करता है ना। फिर भी अस्पतालें भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? हमसे कहा किसी ने कि तो आपने डॉक्टरी छोड़ी क्यों? मैंने बोला मैं जब डॉक्टरी पढ़ रहा था मैंने सोचा था मरीज सब ठीक कर दूंगा तो अस्पतालें कम हो जाएंगी, लेकिन रोज में देखो नई अस्पताल बन रही है, इसका मतलब मैं ही मरीज बढ़ा रहा हूं, तो मैं ही काम छोड़ दूं कम से कम? तो अस्पताल कम हुए हैं क्या पहले से? हॉस्पिटल कम हो गए हैं क्या पहले से? गांव में एक डॉक्टर होता था तब भी सब ठीक थे, अब जितने आदमी है उतने डॉक्टर फिर भी सब बीमार, तो फायदा क्या इसका? ऐसे कैसे काम करने का फायदा क्या? जैसे इलाज नहीं हो रहा आदमी ठीक तो हो नहीं रहे, क्यों नहीं ठीक हो रहे? डॉक्टर की भी अपनी परेशानी है बेचारे की। क्या डेफिनेशन है डॉक्टर की मालूम है? वन हु किल द इल बाय पिल एंड पेशेंट बाय बिल। आदमी की बीमारी को दवाई से ठीक करता है, मैं क्या कीटाणु को दवाई से मारता है और मरीज को बिल से मारता है, इतना भारी बिल देता है। अब क्यों नहीं इतना पैसा ले डॉक्टर, उसको पढ़ाने के लिए 25-25 लाख रुपया दे के जाना पड़ता है। पहले आके वो 25 लाख ब्याज के साथ निकालना चाहते ना, वो सेवा तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए चारों ओर से सिर्फ एक दूसरे का गला काटने वाला कारोबार चल रहा है। कोई नहीं है जो किसी को कहे कि किसी को सुख से जीने दो। ऐसी अवस्था में इस रोग से बचने का कोई साधन ढूंढो, बहुत मुश्किल काम है, समय बहुत कठिन आ रहा है। दृढ़ संकल्प कर लो, समय बहुत कम है, दवाई खानी पड़ेगी, नहीं चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। और सावधानी ऐसी रखनी है कि कभी इसको छोड़ना भी नहीं।
एक दफा पकड़ा जाए तो छुटता भी
है। एक जगह
अगर पकड़ा भी जाए तो छुटता भी
है। कौन? भगवान का नाम एक बार पकड़ा जाए। बहुत अच्छा, आपकी बात लाख रुपए की है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई भगवान किसी को पकड़ ले अथवा कोई भगवान को पकड़ ले तो फिर भगवान उसको छोड़ता नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण इसका है। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के छोटे थे, पालने में सोए थे झूले के अंदर यशोदा मैया के नंद महल में। कंस ने भेजी पूतना को। पूतना आकाश मार्ग से बहुत सुंदर अपना रूप धारण करके आई। इतना सुंदर रूप था कि लोग समझ रहे थे कोई देवी जा रही है, इंद्र के लोक से स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है। अथवा किसी ने तो पूछा, आप तो लक्ष्मी जैसी लगती है लेकिन आपके हाथ में कमल क्यों नहीं है? और यहां तक कि भगवान की माता यशोदा भी उसको देख के करी हमारे भाग है कि हमारे घर में आज देवी पधारी है। और आते ही कहा कि इस बच्चे को भूखा है, दूध कोई नहीं पिला रहा, इधर लो मैं दूध पिलाती हूं। अरे जान न पहचान, पता नहीं कौन कहां से आया। और मां ने अपना लाडला बच्चा जो बहुत बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था, 12 महीने के लिए व्रत धारण किया था, द्वादशी का व्रत 12 महीना किया था तब बालक ऊपर, और दे दिया उसने, उठा लिया, हाथ से नहीं दिया, उठा लिया। और उठाने के बाद इस ऐसे स्तन मुंह में डाला तो उसने ऐसे बच्चे को तो पकड़ेगा, बच्चा अपने आप तो नहीं पकड़ सकता है, उसने हाथ से ऐसे पकड़ा दूध पिलाने के लिए और स्तन के ऊपर लगा के आई थी विष। भगवान ने, गोपाल ने दो हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया और दो पांव छाती को लगा लिए। और जैसे ही दूध पीने के लिए दूध को खींचा अंदर से तो उसके प्राण खींचे, उसको पीड़ा होने लगी। वो बोलते छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोलता है एक बार पकड़ता है तो नहीं छोड़ता, अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। वो भागी वहां से। भगवान ने कहा कि इसको यहां से भागना चाहिए। भगवान आंख भी बंद करके बैठे हुए थे कि मैंने आंख खोली तो इसका ये सुंदर रूप एकदम बदल जाएगा और जैसी ये राक्षसी है वो देखेगी, मेरी मां डर जाएगी इसको देखकर, इसके इसका रूप ऐसा यह नहीं होना चाहिए। और फिर जितनी बड़ी है इतनी बड़ी हुई और यहां गिर गई तो हमारे बाबा का घर ये नीचे गिरा देगी, इसलिए क्या करना चाहिए, अब इसको ऐसा पीड़ा दो कि यहां से दौड़ के भागे, और जब भागेगी तो फिर मैं इसको इसके असली रूप में प्रकट कर दूंगा। जैसे भागी, कंस के बगीचे के पास पहुंची तब उसका 12 योजन का लंबा शरीर हो गया और नीचे गिरी, फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा, पकड़ के बैठे थे। पूतना मर गई और गिरते ही कंस के बगीचे के सारे पेड़ नाश कर दिए, भगवान ने फिर भी नहीं छोड़ा। जब गोपियां आई, ग्वाल आए, नंद बाबा आदि आए तो गोपों में भी हिम्मत नहीं हुई ऊपर जाने की, देख तो रहे थे लेकिन गोपियां ऊपर गई, भगवान को ऊपर से उतार के नीचे लाई और नीचे लाकर गाय की पूंछ से भगवान को रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी। पहले गऊ ने भगवान की रक्षा किए, फिर भगवान ने गौ की रक्षा किए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे से करता है मैं वैसे उससे करता हूँ। पहले गाय ने गोपाल की रक्षा की, फिर गोपाल ने गाय की रक्षा की, और गाय की पूछ लेके गोपियों ने मंत्र पढ़े, फिर माताएं जो अभी छोटी उम्र की हैं, जिनको बालक भगवान आगे देगा, वो मंत्र सब माताओं को याद करना चाहिए। गोपाल सर की रक्षा करे गोवर, ऐसे एक एक अंग के ऊपर हाथ लगाती जाती हैं और मंत्र पढ़ती हैं। ये जो हम जो रोज तिलक लगाते हैं 12 जगह पे, ये भी रक्षा का मंत्र है शरीर की। गोवा केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोय, ये शरीर की रक्षा है। रोज मंत्र लगाने का मतलब शरीर को कवच धारण कराना है। वहाँ उस जगह जहाँ पूतना के उधार के बाद भगवान श्री कृष्ण की छोटे बाल रूप में जो यशोदा गोपियां सब रक्षा के मंत्र पढ़ती हैं, वो जाके किसी को याद करना चाहिए, हर माता को अपने बच्चे की रक्षा के लिए। और फिर तिलक तो सबको, उधर प्रभुपाद ने लिखा है तिलक के 12 जगह पे लगाते हैं, ये भी रक्षा है। एक सर के ऊपर लगाते हैं केशवाय नमः, एक उधर के पेट के ऊपर लगाते हैं नाभि से ऊपर, एक छाती के ऊपर, एक गले के ऊपर, एक सीधे साइड में पेट के ऊपर उधर पे, दो हाथ के ऊपर ऊपर यहाँ, एक लेफ्ट साइड पेट पे और दो यहाँ हाथ पे, और एक गर्दन के नीचे और एक कमर के पीछे। ये 12 और 13वां फिर जहाँ शिखा होती है वहाँ, तो ये 13 जगह पे भगवान के नाम लेके तिलक लगाने का नियम है। और ये तो सबको एक कागज छाप के देना चाहिए और ये सबको रोज लगाना चाहिए। और ऐसे शास्त्र में लिखा है बगैर तिलक लगाए भगवान के सामने जाता है वो तो स्वपच चंडाल से भी नीचे माना जाता है। स्वपच चंडाल का मतलब है कि इंसान की खोपड़ी में कुत्ते का मांस पचा के खाने वाला, उसको बोलते हैं स्वपच चंडाल। तिलक नहीं धारण किया हुआ है, भगवान के सामने जाता है तो वो उसको, ऐसे शास्त्र ने वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से ये तो रोज सबको धारण करना चाहिए। जितने भी आप भगवान के, जितने ठाकुर जी का देखेंगे विग्रह, सबको तिलक लगा हुआ है, कोई एक नहीं है जिसको तिलक नहीं लगा हुआ है। तो ये तो पहली पहचान है कि सबको लगाने का नियम बनाना चाहिए। अपनी रक्षा करने में करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जो अपनी रक्षा की ध्यान नहीं रखता है वो, उसको क्या कहेंगे, मूर्ख है। भैया से वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पे जाता है तो कहते हैं अपनी रक्षा का ध्यान नहीं करता है, तो सरकार पकड़ के दंड देती है कि नहीं देती? फायदा हमारा, फिर भी पुलिस रोकती है। बगैर बेल्ट के जाता है तो गाड़ी नहीं चला सकता है, और बगैर तिलक के जाता है तो भी दंड देना चाहिए। वो तो भगवान की तरफ से यमराज के दूध दंड देते हैं, जो नहीं लगा के जाता है उसको यमराज के दूध पकड़ के जाते हैं। जिसको तिलक लगा है यमराज के दूध आप नहीं लगाते, यमराज ने ऐसे कह दिया है कि जिसको तिलक लगा है उसके पास भी नहीं जाना। वो वृंदावन के पास कोई अचानक ऐसे मर गया, ऊपर से जाते हुए कौए ने बीट गिरा दी, और कभी एक कौए ने बीट गिरा दी और जम के दूध देने के तिलक तो नहीं लगा, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको भी हाथ नहीं लगा रहे। इतने डरते हैं तिलक वाले के पास भी नहीं जाते। तो इतना बड़ा, यहाँ सब बगैर हेलमेट के भागते हैं तो डरते हैं कि नहीं डरते? जब पुलिस वाले से बगैर हेलमेट के डरते हो तो बगैर तिलक के जमराज से के जूतों से नहीं डरते हो? इतना सारा मेकअप का सामान घर में लेते हो, हजारों रुपयों का, ये 2 रुपये का तिलक का इतना 3 महीने चलेगा, वो लेने में कौन सी परेशानी? पानी में घिस के लगाना है, कोई क्रीम नहीं है, कोई ऑयल नहीं है स्पेशल का, और रोज बहुत अच्छी तरह से सुंदर ऐसा लगाना चाहिए कि सामने वाले देखने वाले का भी उद्धार हो जाए। वैष्णव के तिलक को देखने से सामने वाले का हृदय गदगद हो जाता है, भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है। तो ये चिन्ह तो धारण करना चाहिए, इसमें न धारण करने के लिए तो कोई कारण ही नहीं। नहाने के बाद पहला काम ही करते हैं तिलक लगाने का, ये नेम है। नहाने के बाद जैसे मेकअप करते हैं ना, ये हमारा मेकअप है, ये हमारा मंगलसूत्र है जो गले में पड़ा है, देखो माला, ये मंगलसूत्र वाली को शुभ माना जाता है ना, मंगलसूत्र माता जी लोग पहनते हैं ना, एक तो सौभाग्यवती कहते हैं कि इसका सुहाग है इसलिए पहन के बैठी है और प्रेम से दिया है, ये भगवान हमारा पति है हम उसके सेवक है, ये हमारा मंगलसूत्र है। नहीं, मंगलसूत्र तो विधवा के समान है इस दुनिया में। तो नहाने के बाद पहला मेकअप हमारा यही होता है तिलक।
रात को जाग आ जाती है 2 बजे 2:30 बजे 1 बजे 1:30 बजे तभी माला सराहने की होती है, तो कर देते हैं कम से कम 8 तो मैं कर देते।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इस टाइम पे 1 बजे मैं नहीं नहाता।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन आपसे,
नहीं आप आप जिस रात को
करता हूँ माला कर देता हूँ 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक माला हो जाती है।
आपका बिल्कुल सही है,
लेकिन हाँ नहीं 1 बजे 2 बजे
कोई परेशानी नहीं, आपके लिए बहुत ठीक है। जब भी उठो कहाँ है, जब लो, जहाँ लो, जैसे लो, भगवान का नाम जरूर लो। नहीं नहीं नहीं, नहाने के तिलक नहाने के बाद है, जब नहाने से पहले कर सकते हैं। माला आपकी आयु में रात को सोने के बाद उठ के कर सकता है, नौजवान बच्चे हैं तो उनको नहा धोने के बाद करना चाहिए वैसे नियम से, लेकिन आप कर सकते हैं और इसको ठीक तरह से करते रहो, नो प्रॉब्लम। तो बात क्या कर रहे थे, बीमारी की क्या कथा चल रही थी। हरे कृष्णा।
भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं,
भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। दूसरा एक आया, अब भगवान तो 6 दिन के बाद भगवान हो गए तकरीबन 1 साल के। माँ यशोदा दूध पिलाए रही थी, भगवान भारी होने लगे। माँ ने कहा इतना भार तो था नहीं, मैं रोज उठाती हूँ, आज भारी क्यों, चलो नीचे रख के देखते हैं। उसने नीचे रखा और एक और असुर कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आया और उसने भगवान को उठाया और भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया, क्योंकि वो आकाश में जा रहा था। भगवान ऊपर बोला कैसा है, बगैर टिकट के फ्लाइट का हमारे को मजा मिल रहा है, ऊपर से हमारे को विंडो सीट मिली है, नीचे से देखे क्या है, बड़ा मजा आ रहा था ऊपर ले गया तूफान में। और भगवान ने उसका गला पकड़ के रखा, बोला मेरे को घुमा रहा है, इसको तो गले से पकड़ना चाहिए, बोला है ना। और जब भगवान भारी होने लगे, क्योंकि सारी धरती भगवान के साथ जुड़ी हुई, उनके पेट में है वो धरती से, जितने ऊपर जाए उतने भारी हो, सारा कशिश खींच रही थी नीचे, वो भारी होने लगा। तृणावत बेचारा ऊपर, उनकी फ्लाइट फेल हो गई, फ्लाइट उसकी फेल हो गई। अब वो कहता है छोड़ो, एक बार पकड़ लिया अब नहीं छोड़ना, अब तेरा छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा, बोलो कुछ भी नहीं होगा, तुम नीचे गिरोगे मैं ऊपर गिरूंगा। तो नीचे गिरा, तृणावर्त मर गया, भगवान ऊपर बैठे थे गले के ऊपर चढ़े। तो छोड़ता नहीं है एक बार किसी को पकड़। तो 12 अंक के ऊपर तिलक वाला तो आज लिख के ले ही जाइए पर्चा।
अभी मैं दुबई गया था लास्ट वीक, जहाज पे आज तक नहीं चढ़ा था, पहली दफा जब मैं गया तो वो सीट के शाम को जब आ जाती है, अभी जहाज के वासी पे आया, फिर समुद्र पे आया, फिर मेरे मन में आया कि भगवान का वजह शुरू में ये है कि भगवान का नाम जब श्वास निकले हरे कृष्ण नाम निकले। मैंने कहा समुद्र में अभी नीचे अगर जहाज चला जाएगा तो जाना तो है ही है ना, कंटिन्यू साथ। फिर मैंने 1 घंटा कंटिन्यू की हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
वो पायलट तो सीधा भगवान के धाम जाएगा जिसने आपको डरा दिया। सबको ये बुद्धि भगवान दे के ऊपर आकाश में जब उड़ते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान का नाम जपते हुए जाए तो अच्छा है। अच्छा है, आप सही कह रहे हैं। जहाज में क्या, बस में जाए तब भी भगवान का नाम लेना चाहिए। हमने कभी आपको बताया था एक बार, एक सत्संग करने वाला बहुत बड़े प्रवचन पंडाल प्रोग्राम, लोग लाखों आते थे, मरने के बाद वैकुंठ में उसको जाने नहीं दे, वैकुंठ के दूत बोले बैठ जाओ मत जाओ यहां से। थोड़ी देर के बाद अचानक एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए, उसको वैकुंठ का दरवाजा खोल के अंदर भेज दिया। ये उठ के खड़ा हो गया, क्या करते हो ये तो न्याय नहीं है आपके वैकुंठ में भी, हम इतने पंडित इतना बड़ा प्रवचन करते थे, लोग कितने लाखों आते थे, हमको वैकुंठ में जाने दी, तो ये आदमी कौन था ऐसा जा रहा है, शक्ल से भी ठीक नहीं लगा। बोला ठहरो सुनते हैं क्या लिखा है, देखो लिखा है कि ये बस का ड्राइवर था। बोला बस के ड्राइवर वैकुंठ में जाते हैं, पर कथा करने वाले नहीं जाते। बोला आगे भी सुनो क्या लिखा है। लिखा कि इतना रफ ड्राइवर था जो इसकी बस में चढ़ता था राम राम करके दो घंटे गुजारता था, इसलिए इसने लाखों लोगों को भगवान का नाम जपा, इसलिए जा सकता है। महाराज तेरी कथा में बहुत से लोग सोते थे, तुमने लोगों को सुनाया है, इसने भगवान का नाम याद कराया, इसलिए ये वैकुंठ जाएगा, तुम अब थोड़ा इंतजार करो। तो आपने तो बाम्बरी उस पायलट का तो उधार कर दिया। हरे कृष्णा। तो बात ये कर रहे थे कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह तपस्या है, दिव्य तपस्या है, इसलिए इसको करने का जो संकल्प कर लेता है वो इस संसार में सुखी रहता है, रोग से मुक्त रहता है, और बार बार इस दुनिया के अंदर नीच जूनियों में बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। ये बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि इस दुनिया में हम बड़े मिनिस्टर बन जाएं अथवा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कुछ भी करें और दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ला गधा बन जाए तो लाभ क्या हुआ। इतनी बुद्धि पहले से सोच लेना चाहिए कि हमको ये मौका मानव जन्म का गंवाना नहीं है, तुच्छ संसार के छोटे भोगों के पीछे हमें निश्चित रूप से रोज दिव्य तप करना है, सावधानी के साथ भगवान का नाम जपना है, और केवल भगवान का प्रसाद ही खाना है और कुछ अंदर डालना ही नहीं है मुंह में। ये संकल्प करेंगे तो संसार में सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हाँ जी, आप जरूर पूछिए। सात फेरे, सात जन्म तक वो जान नहीं छोड़ेगी जो आपके पीछे आएगी, बाकी का पता नहीं है, सात जन्म नहीं होते हैं, वो सात जन्म तक रहेगी साथ में। हाँ,
मनुष्य का जन्म छठा जन्म होता है, मनुष्य का जन्म छठा जन्म होता है, हम लोग कहते हैं मर रहे हैं मर रहे हैं, मरना कुछ नहीं होता है, हमें हिसाब से जन्म कर जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कुत्ता वगैरह नहीं मरना चाहिए, और उनके हिसाब से पहले पांच जन्म एक जन्म कुत्ते का होता ही है और एक जन्म चीटी का भी होता ही है।
ये सात नहीं है, 64 लाख जूनियर है,
जिनाली मन मनुष्य का जन्म मिलता है, बट लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ा सात जन्म भी होते हैं।
नहीं, वो क्या मानव जो आता है, प्राय सतोगुण का मानव, गाय मरती है तो मानव जन्म में जाती है गाय, और शेर मरता है वो भी मानव बनता है रजोगुण का है, बंदर मरता है तो मानव बनता है तमोगुण का है। तो ये जूनियर है जहां से ट्रांजिशन ह्यूमन में आती है, तो ये ट्रांजिशन है, लेकिन इन जूनियों में आदमी को जाना पड़ता है अगर उसका व्यवहार जीवन का वैसा है। ये तो ये कोई मुश्किल नहीं है, भगवान को उतनी बुद्धि है। आप इस दुनिया में एक आदमी सामने से आप गाड़ी चला के जा रहे हो और ऐसे खड़ा हो तो आप क्या बोलते हो, गधे हो क्या, हटते नहीं हुए, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते, गधे की तरह खड़े हो, तो क्या तुमको समझ में आता है ये गधा है, भगवान उसको मरने के बाद गधा बनाए में कोई परेशानी होगी क्या, इतना भी अकल नहीं है भगवान को। हम इस दुनिया में कितने लोगों को कितना जन्म दे देते हैं, देखा है आपने, ये सारा दिन देखो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, बोलते हैं कि नहीं लोगों किसी को कोई ज्यादा बोलता है, हम तो कई जन्म लोगों को रोज दे देते हैं, किसी को कुत्ता बना देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं, और लोग तो बड़े शोक से कहते हैं हम तो शेर के पुत्र हैं, तो किसी ने कहा है तो फिर भी पशु ना, इंसान तो नहीं बना ना अभी तक। जन्म बेटा जन्म होते हैं, सतोगुण का व्यक्ति देवता लोग देवता बनता है, देवलोक में जाता है, रजोगुण का इंसान वापस बनता है, तमोगुण का व्यक्ति नीच जूनियों में जाता है। ऐसे शास्त्र का बहुत बड़ा सुंदर नियम है। आपका प्रश्न अच्छा है, पंडित जी के बेटे के साथ आपकी मित्रता है तो पंडित जी के साथ संग करने से आदमी कुछ धर्म के बारे में जानता है, ये अच्छा काम है, तो आप बहुत अच्छा किया, और आगे भी भगवद गीता को सीखने का मन में संकल्प कर लो, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ मिला है, इसको भोग विलास में मत समाप्त कर दो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरि ओम। हरे कृष्णा।